تفسير وما خلقنا السماء والأرض. اللہ رب العزت بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں کیا, اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو, وما بینہما, اور جو ان دونوں کے درمیان ہے, باطلا, باطل, خالی از مصلحت. آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, ہم نے اس کو نکما پیدا نہیں کیا. ذالک ظن الذین کفروا, یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. فویل للذین کفروا من النار, سو خرابی ہے, سو بربادی ہے, سو تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. اور تباہی کس چیز کی؟ آگ کی. اور آگ جہنم کا بھی ایک نام ہے, اور جہنم کے اندر جو سزائیں ہیں ان سزاؤں میں آگ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر کرتے ہیں. آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے 69 درجے زیادہ ہے. اور قرآن میں اللہ نے جہنم کی آگ کی نسبت اپنی طرف کی ہے, نار اللہ, اللہ کی آگ, نار اللہ الموقدہ, اللہ کی جلائی ہوئی آگ. یہ جو آیت ہے یہ بڑی خوبصورت آیت ہے, اور اس آیت میں انسان کو مقصد زندگی بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے انسان, تو غور تو کر, تو سوچ تو صحیح کہ آسمان, زمین اور جو چیزیں بھی ان کے درمیان ہیں, کسی چیز کو بھی ہم نے بے مقصد پیدا نہیں کیا. ہر چیز کو بنانے کا ایک مقصد ہے. اور کافر کیا سمجھ رہے تھے کہ آسمان اور زمین اور کائنات اللہ نے ایسے ہی بنا دی, انسان کو ایسے ہی بنا دیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے لوگ مر جائیں گے, کھپ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, اور حساب کتاب کوئی نہیں ہونے والا. اس لیے وہ عقیدہ توحید اس کا بھی انکار کرتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے. تو جس نے توحید کا انکار کیا, جس نے آخرت کا انکار کیا, دراصل اس نے کائنات کی تخلیق کی سب سے بڑی حکمت کا انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ کائنات بنانے کا مقصد بتا رہے ہیں کہ کائنات بنانے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے, کہ قرآن نے بہت سی صورتوں میں ہمیں یہ مقصد پتا چلتا ہے. مثلا سورۃ ملک, الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, سورۃ زاریات, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا. اور وہ مقصد کیا ہے کہ جن اور انسان جو ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ میری عبادت کریں, میری اطاعت کریں. اور یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو اللہ نے نکما بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا. مثلا آپ دیکھیں, آپ سب کے ہاتھ میں کیا ہے, پین ہے, پین یا قلم ہے, پینسل ہے, اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے, لکھنا. اور جو پین یا پینسل اپنا مقصد پورا نہیں کرتا, سکہ ٹوٹ گیا ہے یا سیاہی ختم ہو گئی ہے, تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں, آپ اس کو پھینک دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں. آپ اپنے جسم کو دیکھیں, اپنے وجود پر غور کریں کہ ہمارا جو وجود ہے, آنکھیں کیا ہیں, ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں, کان بنانے کا مقصد کیا ہے کہ کانوں سے ہم سنیں, زبان سے ہم باتیں کرتے ہیں, کھانا آپ کھاتی ہیں, آپ کھانا کس لیے کھاتی ہیں, کھانا کھانے کا مقصد کیا ہے, طاقت ملے آپ کو, قوت آپ کو ملے. آپ کبھی ایسا نہیں کرتی کہ کھانے کی بجائے آپ پتھروں کے نوالے لینے شروع کر دیں, لکڑی کا برادہ کھانا شروع کر دیں. آپ مرچوں کی جگہ کبھی بھی اینٹوں کو پیس کر نہیں ڈالتی, رنگ ملتا جلتا ہوتا ہے, سرخ طرح کی اینٹیں ہوں آپ نہیں ڈالتی. آپ جو ہیں کیا کرتی ہیں, ہم جو کام بھی کرتے ہیں ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے جو ہمارے سامنے ہوتا ہے. کرسی جو ہے اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے, آپ اس پر بیٹھیں. آپ ایسا نہیں کرتی کہ کرسی کو الٹا کر دیں. ٹیبل جو ہے और इस पर चढ़कर बैठ जाए। टेबल बनाने का मकसद क्या है कि इस पर कुछ चीजें रखी जाती हैं। तो आप कायनात की एक एक चीज को हम जो बनाते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हैं, और अल्लाह ही हमारे अंदर ये कुव्वत और सलाहियत हमें बख्शता है, तो उनको बनाने का एक मकसद है। मैं कह रही थी कोटों को ही देख लें। आजकल स्नो सीजन है और स्नो स्टॉर्म और विंडी मौसम बहुत ज्यादा चलता है, तो कोट भी कई तरह के हैं। कोई रेन कोट है और कोई जो है वो हैवी है, कोई लाइट है, कोई विंडी मौसम का है, कोई स्नो सीजन का है। मौसम को लोग पढ़ते हैं, मौसम को देखते हैं, फिर उसके मुताबिक वो अपने ड्रेसअप होते हैं, लिबास का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख लें कि जितनी जिद्दत है, जितना तनव्वो है, जितनी चीजें हैं, तो हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है। डिग्रियां इंसान लेता है, इल्म हासिल करता है, कारोबार करता है, घर बनाता है, गाड़ी लेता है, हर चीज का कोई ना कोई मकसद है। और फिर वो हम मकसद सामने रखते हैं ना, जरूर आप सोचती हैं कि ये काम मैं कर रही हूं तो क्यों कर रही हूं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान, आसमान और जमीन और जो कुछ इनके दरमियान है, मैंने इसको बेमकसद पैदा नहीं किया। तो इन सबको बनाने का, संवारने का, दुनिया में लाने का मकसद क्या है? मुझे भी और आपको भी और कायनात का जर्रा जर्रा ये इस बात की तरफ गवाही दे रहा है, इस बात की शहादत दे रहा है कि इस दुनिया के बाद एक और दुनिया होगी जहां पे अल्लाह ताला हिसाब किताब करेंगे और जजा और सजा होगी। जिंदगी इंसान की है, मानिदे मुर्गे खुशनवा, शाख पे बैठा कोई दम चहचहाया उड़ गया। मैं लहलहाती शाख को समझा था जिंदगी, पत्ता गिरा दर से फना दे गया मुझे, है ना? तो असल बात क्या है कि मेरी और आपकी जिंदगी का दुनिया में आने का मकसद है और आखिरत होगी, तो इसलिए क्या करना चाहिए? दुनिया में आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन जालिका जन्नुल लजीना कफरू, लेकिन ये गुमान किया उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया कि आसमान और जमीन और जो कुछ इनके दरमियान है, इसको बनाने का कुछ भी मकसद नहीं है। फवैलुल लजीना कफरू, बस तबाही है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया। एक कुफर काफरों ने किया और एक आज मुसलमान करते हैं। कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन कलमे के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते। इस्लाम तो हम ले आए, लेकिन इस्लाम के दायरे में, इस्लाम के कमरे में दाखिल होकर इस्लाम के रूल्स रेगुलेशन को अपने ऊपर नाफिज नहीं करते। एक कुफर होता है जबानी और एक कुफर होता है अमली। एक होता है कल्बी, है ना, कि दिल से। तो मुख्तलिफ तरह के कुफर हैं। तो अब काफरों ने इनकार किया तो उनके लिए आग है, और ईमान लाकर जो कुफर करता है वो है मुनाफिक। डबल फेस, कंट्राडिक्शन, उसके कॉल और फेल में तजाद हो जाता है, और वो आग में ही नहीं जाएंगे बल्कि जहन्नुम की आग के सबसे निचले दर्जे में होंगे। अल्लाह ताला ने अगली जो आयत है वो भी मकसद जिंदगी को वाजे करती है। बड़ा जबरदस्त अंदाज है, बड़ा सख्त अंदाज है। अल्लाह ताला पूछते हैं, अम क्या नजअलुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति कल्मुफ्सिदीना फिल अर्ध, अम नजअलुल्मुत्तकीना कल्फुज्जार। क्या हम कर दें, क्या हम बना दें उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले सवाले किया? क्या हम पैगंबर जो ईमान लाने वाले हैं, क्या हम अबू बकर, बिलाले हबशी, उमरे फारूक, उस्माने गनी और बेशुमार जो ईमान लाने वाले हैं, ईमान लाने वाले और अमले सवाले करने वाले, तो सहाबा का नाम लिया जाए तो रजी अल्लाह अन्हुम, तो क्या हम पैगंबरों को और सहाबा को और सहाबियात को और दुनिया में जो ईमान लाने वाले हैं उनको और अमले सवाले लाने वालों को, अमले सवाले करने वालों को, सवालेहात, सवालेहातुन की जमा है, सवालेहातुन की जमा सवालेहात है। सुलह इसका रूट है, नेकी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सुलह करना भी नेकी होती है। तो अमले सवाले करने वाले और ईमान लाने वाले जो हैं, क्या हम उनको बना दें? का मानिद है मानिद, मिसल, यकसा, किसके? कल मुफ्सिदीन, मानिद मुफ्सिदीन के, मुफ्सिद की जमा है मुफ्सिदीन, और ये इस्तेमाल किया जाता है फसाद करने वालों को। फासिक भी होते हैं ना, वो मुफ्सिदीन होते हैं जो फसाद करते हैं। फिल अर्दी में जमीन, अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, क्या हम बना दें मुत्तकीन को फुजार की तरह? मुत्तकी की जमा है मुत्तकीन, फाजिर की जमा है फुजार, और जैसे फजर नहीं है, फूट कर अंधेरे से रोशनी निकलती है, और फाजिर क्या करते हैं, तौहीद और जो अल्लाह को मानने के दलाइल हैं उनको कबूल नहीं करते और फट कर नाफरमानी की तरफ जाते हैं। फाजिर फुजार अल्लाह की अतात की हदों से निकल कर गुनाहों की तरफ जाते हैं। फुजार ये गुनाहों में हठधर्मी दिखाने वाले मुजरिम लोग। और आप देख लें, क्या हम मुत्तकीन को मुजरिमों की तरह कर दें? बड़ा खूबसूरत अंदाज है और बड़ा ही सोचने समझने पर अमादा करने वाला। आप यूं ही समझ लें कि क्या अबू जहल और बिलाल हबशी का अंजाम अल्लाह ताला एक कर दें? अबू जहल जो था वो कैसा सख्त दुश्मन था इस्लाम का। अबू जहल और उस तरह के अबू लहब आप देख लें, उम्मे जमील को देख लें, और भी बहुत से लोग जिन्होंने जो है इस्लाम को नुकसान पहुंचाया और उसको चाहने वालों को। और हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हो और उनके साथ जिनकी वो गुलामी में थे, जो गुलाम थे जिनके, उसका नाम क्या था? उमैया बिन खल्फ। कितना जुल्म करता था आपके ऊपर ना, क्या उन दोनों का अंजाम एक जैसा हो सकता है? अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं इन दोनों का अंजाम एक जैसा नहीं करूंगा। तो ये मिसाल है, एक तरफ ईमान लाने वाले हैं, दूसरी तरफ मुफसिद हैं। एक तरफ मुत्तकी हैं, अल्लाह से डरकर अल्लाह की नाफरमानी से बचने वाले और अतात की जिंदगी इख्तियार करने वाले, और दूसरी तरफ फाजिर हैं, अल्लाह की अतात की हदों से निकल जाने वाले। कभी वो मुफसिद बनते थे, कभी फाजिर। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं इन दोनों का अंजाम एक जैसा नहीं कर सकता। कुरान में एक और जगह आता है कि मालकुम कैफ तहकुमून, तुम्हें क्या हो गया है, तुम कैसे कैसे फैसले करते हो? क्या हम मुत्तकियों का अंजाम जो है वो फाजिरों जैसा कर दें, काफिरों जैसा कर दें? ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो यहां पे भी वही अंदाज है कि जब दोनों का दुनिया में सोचने का अंदाज मुख्तलिफ था, जिंदगी गुजारने का तरीका मुख्तलिफ था, तो दोनों का अंजाम भी जो है वो मुख्तलिफ होगा। दुनिया में तो हो सकता है कि काफिर को मोमिन से बढ़कर मादी राहतें मिल जाए, इससे ये नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि काफिर के लिए जो है वो आखिरत भी काफिर की है ना। तो दुनिया इम्तहान गाह है, अल्लाह ताला जिसको चाहे ज्यादा दे दे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आखिरत भी इन्हीं लोगों की जो है वो होगी। तो ये कायनात किसी खलंडरे का खेल नहीं है। लाजिम है कि बातिल को सजा मिले और नेकी करने वालों को इनाम मिले। तो ताज्जुब का अंदाज है जिससे इन आयतों को शुरू किया गया है, और उसके बाद जो है अल्लाह ताला दलायल के साथ ये बात बता रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि जिनका अमल मुख्तलिफ हो उनका रिजल्ट एक जैसा निकल आए। यही बात हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने बड़ी खूबसूरत मिसाल के जरिए समझाई। कहते हैं ये किस तरह मुमकिन है कि एक आका अपने ताकिस्तान का मतलब क्या होता है? बाग वगैरह, नखलिस्तान, ताकिस्तान, कि अपने ताकिस्तान की निगरानी पर अपने गुलामों को मुकर्रर करे, जिनमें से बास तो इसके ताकिस्तान के अंदर धांधली मचाएं और कुछ ईमानदारी के साथ अपने फराइज अंजाम दें और आका दोनों के साथ यकसा सलूक करें। तो ये पूरी कायनात अल्लाह का बाग है। अगर कोई आका ऐसा करे तो मानना पड़ेगा कि या तो बिल्कुल बेबस है, या फिर वो बेखबर है, या निहायत ही अहमक और नाइंसाफ है। और अल्लाह ताला की शान कैसी है? अल्लाह तो इससे बेनियाज है कि वो बेबस हो। किताब उन अंजल्लाहु, किताब हमने उसको नाजिल किया। कुरान मजीद का अहले मक्का इनकार कर रहे थे। कुरान का इनकार अल्लाह का इनकार, कुरान का इनकार आखरत का इनकार, कुरान का इनकार रसूल का इनकार, और प्यारे रसूल को इनकार कर रहे तो ये भी आखरत का इनकार भी है और तौहीद का इनकार। हमने इसको नाजिल किया इलही का आपकी तरफ, और कुरान है कैसा? मुबारकुन, मुबारक है। तो कुरान मजीद जो है ये ऐसी किताब नहीं है, ऐसी मुबारक किताब है, ऐसी बरकत वाली है। मुबारक यानी अल्लाह ने इसको मुबारक बनाया है, ये मसदर है। और मुबारक का फिर मतलब क्या है? اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کتاب کو سمیٹنے والے، اس کتاب سے مالا مال ہونے والے، اس سے سمجھنے والے جو ہیں ان کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں، دنیا میں بھی اور اس کے بعد جو ہے وہ آخرت میں بھی، ہے نا؟ تو بات کیا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو جو ہے وہ مبارک کتاب کے طور پر جو ہے وہ نازل کیا ہے. اور آپ کو پتا ہے برکت کے لغوی معنی ہوتے ہیں خیر، خیر و سعادت کی افزائش. اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نہایت مفید کتاب نازل کیا، زندگی کو گزارنے کی اس میں ہدایات بھی ملتی ہیں اور اس کی پیروی میں نفع ہی نفع ہے، نقصان کوئی نہیں ہے. تو یہ کتاب مبارک کتاب ہے. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ لوگ اس کے آیات پر دبر کریں. دبر جو ہے وہ ویسے پیٹھ کو کہا جاتا ہے نا، تو معنی کیا ہے؟ تدبر کے معنی کیا ہیں؟ کہ کسی چیز کے اندر جو پنہا چیز ہے، جو چھپی ہوئی چیز ہے، نتائج پر غور کرنا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا. تو لوگ جو ہیں اس کی آیات پر غور کرے. قرآن نازل کرنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے، اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے. بھلے یہ تذکرہ، اور تاکہ لوگ سبق لیں، ایسی نصیحت جس سے دل پگھل جائیں. اور کون لوگ نصیحت لیتے ہیں؟ اول الالباب. لب جو ہے وہ کسی چیز کے خلاصے کو کہا جاتا ہے. آدمی کے پاس جتنی بھی صلاحیتیں ان کا خلاصہ عقل ہے، عقل ست. تو عقل مند لوگ جو ہیں وہ سبق حاصل کرتے ہیں. اور عقل مند کون ہیں؟ جو متقی ہیں. عقل مند کون ہیں؟ جو کہ آمنوا وعملوا الصالحات کرنے والے ہیں. تو قرآن مجید سے تدبر کرنے والے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے والے جو ہیں وہی لوگ ہیں جو ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی غور کرنا ہے کہ کیا ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے میں جو ہے میں اور آپ جو ہیں وہ شامل ہیں کہ نہیں، میں اور آپ شامل ہیں کہ نہیں. تو اصل میں اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ ہم بھی اگر متقی بنیں گے تو پھر ہی اللہ کی نظروں میں عقل مند ہوں گے. کسی کو دنیا عقل مند کہے تو وہ عقل مند نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی نظروں میں کوئی عقل مند نہ ہو. ہمارے ہاں عقل مند اس کو کہا جاتا ہے جو دنیا میں بنتھے بیل کی طرح پھرتا ہے اور چرتا چکتا ہے، جس کھیت میں چاہے جائے اور اس میں جو ہے وہ چکتا جائے، حلال حرام کی جو تمیز نہ کرے. جو انسان اور خوب دنیا کمائے اور دنیا میں جو ہے وہ بڑا کامیاب نظر آئے تو اس کو کہتے ہیں بڑا عقل مند. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت سی جگہ پہ کہتے ہیں، جیسے سورت مومنون آیت 115، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. پھر سورت دخان آیت 38 سے 40 تک، وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعین. تو یہ جو آیات ہیں آیت نمبر 27 سے 29 تک، یہ تینوں آیتیں جو ہیں یہ زندگی کا مقصد میرے اور آپ کے سامنے رکھتی ہیں اور آخرت کے آنے پر عقلی دلیل دیتی ہیں. پہلی دلیل کیا ہے؟ کہ دنیا کھیل اور تماشا نہیں ہے. دوسری دلیل کیا ہے؟ کہ عدل کا تقاضا ہے کہ اچھے اور برے کو اس کے عملوں کی جزا اور سزا ملے. اور تیسری دلیل کیا ہے؟ کہ جزا اور سزا ایسے ہی نہیں ملے گی بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، کتاب کو نازل کیا، پیغمبروں کو بھیجا اور کتاب کو نازل کیا تاکہ سزا یا جزا سے پہلے لوگوں کو سمجھایا جا سکے، ان کی رہنمائی کی جا سکے تاکہ لوگ جو ہیں غور و فکر کر سکیں. اور پہلا سبق جو آپ نے پڑھا ہے، جو 26 نمبر آیت پر ختم ہوا تھا، اس میں آپ نے پڑھا تھا نا خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنی اور عدل کرنا ہے اور اللہ کا نائب بن کر جینا ہے. داؤد علیہ السلام کو یہ نصیحت کی تھی. اور یہاں پر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ آخرت کے محاسبے کا پھر خیال نہیں کرتے، وہ دنیا ہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں اور پھر آخرت کی تیاری جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ میں اور آپ اس بات کو سمجھیں कि मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या है। और जब किसी को किसी का मकसद जिंदगी मिल जाता है ना, जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई मेरी खानाबदोशी को घर मिल गया, जब किसी को किसी का मकसद जिंदगी पता चल जाता है ना, फिर वो अपने वक्त को जाया नहीं करता, फिर उसको चुप लग जाती है, फिर वो फजूल बातें नहीं करता, बेमौका बातें नहीं करता, इधर उधर की गीबत चुगली बहतान में वक्त जाया नहीं करता, फिर वो लंबी फिसार कर सोता नहीं है, फिर वो इतना नहीं खाता, इतना नहीं खाता कि उसके लिए चलना मुश्किल हो जाए, सांस लेना मुश्किल हो जाए, फिर जो खाता है उसी को संभालता नहीं है, बस वो उतना खाता है जिससे जिया जा सके, फिर वो उतना जो है वो पकाता है और उस तरह पकाता है जिसमें वक्त कम से कम लगे, और फिर उसकी जिंदगी का मकसद क्या बन जाता है कि सारी जिंदगी अल्लाह की बंदगी करनी है, अब्द बनना है, अख्यार में शामिल होना है, चुने हुए लोगों में शामिल होना है, तो सारी जिंदगी खुद नेक बनता है, दूसरों को नेक बनने की दावत देता है, तो क्या करता है, जब तक जीता है तो अल्लाह के दीन का काम करता है, और जब मरता है तो मरते मरते भी काम करते हुए मरता है, क्योंकि उसकी जिंदगी का मकसद क्या बन जाता है कि दुनिया में जीते हुए काम करना है और काम करते करते मरना है, मरते मरते भी काम करना है और काम करते करते जो है ना मरना है, पर ये उसकी जिंदगी का मकसद बन जाता है, बस अपनी जात के लिए नहीं, अपनी ख्वाहिशात की पूजा करने के लिए नहीं। और फिर अल्लाह ताला यहाँ पे दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम की मिसाल देते हैं, क्योंकि अहले मक्का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तंग करते थे, आप पर और अब ईमान लाने वालों पर जुल्म सितम करते थे, मजाक उड़ाते थे, इस्तेहजा करते थे और बहुत सी ऐसी बातें करते थे जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ पहुंचती थी और अहले ईमान को भी। वो पहले कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबर कीजिए, और उसके साथ ही कहा कि इस बार अला मा यकूलूना वज़कुर अब्दना दाऊद अज़ल ऐद, दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और बड़ी खूबसूरत मिसालें के जरिए ये बात बताई कि मेरा बड़ा ही साबिर बंदा था बादशाह वक्त का, बड़ा अमीर, बड़ा कुछ था उसके पास, और फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला कहते हैं अकलमंद लोग कौन होते हैं, और आपने सबर करना है, वही बात चल रही है, वहबना और हमने बख्श दिया। एक होता है किसी को किसी का कोई हक हो तो उसको दिया जाए, और एक होता है कि किसी के हक के बगैर ही अतिये के तौर पर कुछ दे दिया जाए, तो क्या है वहबना और हमने अता कर दिया और हमने बख्श दिया, हमने बख्शा था क्या ले दाऊद सुलेमान, दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान जो दिया था तो हमने उसको बख्शा था, हमने उसको इनाम के तौर पर जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम दिया था। और सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन थे, सूरत नमल में आप पढ़ ही चुकी हैं वरेसा सुलेमान दाऊदा, के सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे दाऊद अलैहिस्सलाम के जो थे वो वारिस बने थे, दाऊद अलैहिस्सलाम के बहुत से बेटे थे लेकिन वारिस कौन बने, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे वो वारिस बने, और किस चीज में वारिस बने, अल्लाह ताला ने उनको जो है नबुवत में और बादशाहत में और हिकमत में दाऊद अलैहिस्सलाम का जो है वो वारिस बना दिया। तो अल्लाह ताला कहते हैं वहबना ले दाऊदा सुलेमान, कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को बख्श दिया सुलेमान, और सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन थे, नेमल अब्द, कितना अच्छा बंदा, नेमा का ऑपोजिट है बेसा, और यहाँ पे तारीफ की जा रही है तो अब्दियत की तारीफ की जा रही है, दीगर मोजात और दीगर जो अल्लाह ताला ने उनको कमालात से नवाजा था उसकी तारीफ नहीं की जा रही, सबसे पहले जो तारीफ की जा रही है किसकी, नेमल अब्द, कितना अच्छा था मेरा बंदा, इन्नहू अवाब, बेशक वो रुजू करने वाला, अवाब, और अवाब जो होता है कौन होता है, जो जिस्मानी तौर पर भी रुजू करता है और कल्बी तौर पर भी रुजू करता है, अपने इरादे से रुजू करता है और बकसरत रुजू करता है, क्योंकि अवाब यहां पे मुबालगे का सीगा है, अवाब कौन है, अब्दुल्ला बिन उमर ने एक दफा जब रसूल अल्लाह से पूछा तो आपने क्या फरमाया, वो जो तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से मगफरत का तालिब हो, इन्नहू अवाब, बेशक हजरत सुलेमान अलैहि सलाम जो थे बहुत रुजू करने वाले थे। और यहाँ पर अवाब जो है ये मुबालगे का सीगा है, मुबालगे का सीगा है। तो अल्लाह ताला उनकी अब्दियत का कमाल बता रहे हैं। अब्दियत का कमाल क्या है? बादशाह थे, पैगंबर थे, क्योंकि दाऊद अलैहि सलाम के वारिस जो हुए, लेकिन उनका कमाल ये था कि वो मेरे बंदे थे। और जो शख्स अपने रब का ऐसा बंदा बन जाए जिस पर उसका रब उसकी गवाही दे, तो वो है असल में बंदा, और वो है खूब बंदा। और ये कमाल जिसको हासिल है, तो फिर क्या है कि दूसरे तमाम कमाल इस बरकत से मिलते हैं। जब वो अल्लाह का बंदा बन जाता है, पहाड़ उसके अंडर हो जाते हैं, परिंदे उसके अंडर हो जाते हैं। और ये जब अल्लाह के बंदे बन गए सुलेमान अलैहि सलाम, तो अल्लाह ताला ने इनको बड़े कमालात से नवाजा। फिर उसकी बरकतें क्या हैं? जिन उसके तहत हैं, फिर हवाएं उसके अंडर हैं, फिजाएं उसके अंडर हैं, है ना। वो मेरा रुजू करने वाला बंदा था, अवाब। काश के ये अवाब की सिर्फ जो है ये मेरे और आपके अंदर जो है वो पैदा हो जाए। और अवाब बनने के लिए, अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए जरूरत है इस बात की कि हम जो हैं बार बार अल्लाह की तरफ लौटें, बार बार अल्लाह की तरफ जो है वो रुजू करें, और अल्लाह से प्यार करें, और अल्लाह ताला की इबादत करें। जरा सी गलती हो जाए, जरा सी लग्जिश हो जाए, तो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करना, इसको अवाब कहते हैं। फौरन अस्तगफार करना शुरू करना, इसको अवाब कहते हैं, उसको अब्द कहते हैं। अब यहाँ पे हजरत सुलेमान अलैहि सलाम की बड़ी खूबसूरत मिसाल बताई गई है, और ये भी आपकी अब्दियत के कमाल की मिसाल है और आपके अवाब होने की मिसाल है कि आप किस तरह अल्लाह से रुजू करते थे, आप कितना अल्लाह को याद करते थे, आप कितना अल्लाह से प्यार करते थे। इस जब उरिबा अलैहि, और आपको पता ही है कि अर्ज करना, बात करना भी होता है, कोई चीज पेश भी करना। उसने अर्जी दी, जैसे उसने एक बात को पेश कर दिया, और आप उर्दू में भी कहते हैं मैंने अर्ज की है, मैंने एक बात पेश की है। तो इज उरीदा ये माजी मजहूल है, जब पेश किए गए, अलैही उस पर, कि जब उनके सामने जो है लाए गए, पेश किए गए, बिल अशी, ये वक्त कौन सा था? वक्त था शाम का। और मैं आपको पहले ही ये बात बता चुकी हूं कि ये जो अशी का जो वक्त है, ये कौन सा वक्त होता है? जोहर से ये लिया जाता है, और इसके बाद जो है वो अगले दिन का जो है वो यूं समझ लें कि जोहर के बाद से अगले दिन सुबह तक का वक्त। तो अब जो है, अब यहाँ पे मुराद लिया जाता है कि गोया के शाम का वक्त था या असर का वक्त था, जब उनके ऊपर पेश किए गए, उनके सामने पेश किए गए, उनके सामने लाए गए। क्या चीज लाएगी? असफिनात, सफन। स्वाद फा नून से है, और सफन इसका रूट है। और यहाँ पे ये साफिनात का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये घोड़ों को कहते हैं। और वैसे घोड़ों के लिए कुरान में चार लफ्ज आए हैं, खैल, साफिनात, जयाद और आदियात। वल आदियाती दबा, है ना। आदियात आप 30वां पारा माशाल्लाह हिफ्ज कर चुकी हैं। तो वो घोड़े होते हैं जो घुड़दौड़ में हिस्सा लें या जंग के लिए तैयार किए जाएं, मुंह अंधेरे भागने वाले, सरपट भागने वाले, ऐसे भागे कि उनके सुम से जो है जैसे आग की चिंगारियां निकलनी शुरू हो जाएं। बहरहाल, तो एक तो वो है, दूसरा है खैल, ये भी आप पढ़ चुकी हैं, ये इसम जिन्स है ना। वल खैला वल बिगाला वल हमीरा ले तरकबूहा वजीना, आप पहले पढ़ चुकी हैं। और खैल का लफ्ज इसम जिन्स होता है, हर किस्म के घोड़े पर इसका इतलाक होता है। यहां पे असाफिनात और अलजियाद दोनों आया है, दोनों लफ्ज आए हैं जो घोड़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। साफिनात साफिन की जमा है, साफिन की जमा है। और ये वो घोड़े को कहते हैं, उस घोड़े को जो तीन पांव पर खड़े हो और चौथे पांव के सुम को मोड़ कर इस पर टेक लगाए हुए हो। इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि आम तौर पे आप देखें बैलेंस खड़ा होना, ठीक तरह खड़ा होना, तो चारों पांव पर खड़े हों तो घोड़ा ठीक तरह खड़ा होता है ना, तो ये एक स्टाइल है, आप देखें घोड़े का स्टाइल कि तीन पांव पर वो खड़ा होगा और चौथे पांव के सुम को मोड़कर इस पर उसने टेक लगाई हुई है। निहायत ही फरबा और तवाना घोड़ा, मोटा। तो ये जो है ना साफिनाथ, इसके मानी ये हैं कि चौथा खुर सिर्फ जो है उसका सिरा जमीन पर जरा सा टिका हुआ है, तीन पर वो खड़ा है, चौथा पूरा टिकाया हुआ नहीं है। लोग भी, इंसान भी खड़े होते हैं ऐसे, एक पांव उठाया हुआ थोड़ा सा और थोड़ा सा लगाया हुआ है, दूसरा पूरा इंसान जो है वो खड़े होते हैं। तो बहरहाल ये कहते हैं साफिनाथ से बाज लोगों ने कहा कि इससे मुराद है फरबा और मोटे घोड़े, मोटे घोड़े। बाज कहते हैं कि इससे मुराद है निहायत चाको चुबंद घोड़े, एक्टिव, क्योंकि तीन पांव लगाए हैं, चौथा नहीं लगाया हुआ ना, उसका थोड़ा सा सुम ही लगा हुआ है, भागने के लिए तेजी से इंसान भाग खड़ा होता है ना, बाज अवकात लोग पूरे पांव नहीं लगाते जब उन्होंने भागना होता है। अच्छा, दूसरी सिफत है अलजियात की। जियात जो है जवाद, जवाद इसका वाहिद है, या फिर जैयद, यानी दो इसके वाहिद हैं। और जवाद के मानी क्या होते हैं, इसके लिए जरूरी है कि जियाद के रूट को देखें। इसका रूट है जीम वदाल, पहले वैसे आप पढ़ चुकी हैं। जूद का मतलब होता है किसी चीज में वुस्सत होना, और कहते हैं फलां बड़ा जवाद है, इसका मतलब यह है कि सख्त सखी मर्द है, सखी औरत है, जवाद। और इसी तरह जादल फर्श, घोड़े का तेज रफ्तार होना, जैयद। बाज औकात पेपर चेक किया हुआ हो तो उसमें जैयद टीचर लिख देता है, जैयदन जिद्दन, इसका मतलब होता है किसी चीज का बहुत उम्दा होना, बहुत अच्छा होना। तो जियाद मतलब यह है कि बहुत उम्दा घोड़े, या फिर इसके मानी है तेज रफ्तार घोड़े। तो बहरहाल जियाद जो है उम्दा किस्म के जैयद घोड़ों के लिए भी आता है, और उसके साथ ही तेज रफ्तार घोड़ों के लिए भी। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे या खड़े हुए थे, जिस भी हालत में थे, वक्त था असर का या शाम का, और ऐसे घोड़े जिनकी सिफत है साफिनाती, जो तीन पांव पर खड़े हों और चौथा पांव का सिम मोड़ कर उस पर टेक लगाए हुए हों, और उसके साथ वो तेज रफ्तार भी हैं और बहुत उम्दा हैं, वो घोड़े उनके सामने पेश किए गए। फकाला, फिर उन्होंने कहा इन्नी अहबबतु, के बेशक मैंने जो है वो मोहब्बत की है, उन्होंने कहा कि बेशक मैंने पसंद किया हुब्बल खैरी, मोहब्बत खैर की। खैर वाहिद है, खैरात इसकी जमा है, और ये लफ्ज जो है नेकियों के लिए भी आता है और माल के लिए भी आता है, माल जो है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और माल जो है वो मुख्तलिफ तरह का हो सकता है, कोई भी किसी चीज का, जैसे घोड़े हैं तो ये भी एक माल है, दौलत किसी के पास है तो ये भी एक माल है। तो बहरहाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि मैंने मोहब्बत इख्तियार की है, मैंने पसंद किया है हुब्बल खैरी, माल की मोहब्बत। और अल खैर से मुराद यहां पर क्या है, घोड़े। और इस सिलसिले में हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो हदीस भी मिलती है, जिसमें आपने कहा कि अल खैलु माकूद फी नवासिया खैरु इला योमिल कयामा, के घोड़े की पेशानियों में कयामत के दिन तक जो है वो खैर है, कि घोड़े को रखना पालना खैर है, क्योंकि घोड़े जिहाद के लिए इस्तेमाल भी किए जाते थे, है ना, और रसूल अल्लाह के जमाने में भी, और खैर है उसका, घोड़े का होना। तो अब यहां पर क्या है कि उनके सामने जब घोड़े पेश किए गए तो उन्होंने कहा कि मैंने घोड़ों की मोहब्बत जो है वो पसंद की है, यानी मैंने घोड़ों की मोहब्बत इख्तियार की है अन जिक्र रब्बी, अपने रब की याद की वजह से, हत्ता तवारत बिल हिजाब, यहां तक के तवारत वो छुप गए, यहां तक के वो जो घोड़े थे वो छुप गए बिल हिजाब, पर्दे में, ओट में। और फिर इसके बाद क्या हुआ, रुद्दूहा, उन्होंने कहा वापस लाओ इनको, अलैया मेरे पास, फतफिका पस लगा, मसहन हाथ फेरने, मसा करना हाथ फेरना, बिस्सू की सूक जो है पिंडली के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा ये दरख्त की का जो तना होता है उसको भी कहते हैं सूक, बिस्सू की टांगों पर, पिंडलियों पर, और सूक जमा है, वाहिद है इसका साक, सीन अलिफ काफ साकुन, फिर वो लगे टांगों पर, पिंडलियों पर मसा करने, और मसन जो है ये मसदर है छूना हाथ फेरना, वल आनाक और गर्दनों पर, और यहां पर आनाक इस्तेमाल हुआ है और आइन काफ इसका वाहिद भी है और इसका रूट भी है कि इसकी गर्दनों पर जो थे वो क्या करने लगे, पिंडियों पर और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे। ये जो वाक्या है, ये जो तमसील है, इसकी जो तफसीर है इसमें जो है वो उलमा में इख्तलाफ है, और इसको हम समझ लेते हैं। और इस आयत के बिलअमूम जो है उलमा ने दो मानी बयान किए हैं, और कैसे दो तफसीरें हैं इसकी। नंबर वन, इस पे आप अल्फाज पर आप गौर करें, क्योंकि तर्जुमा आप समझेंगी तो फिर आपको इसकी तफसीर भी समझ आएगी और इख्तलाफ जो है ना वो भी समझ में आएगा। तो पहली बात कि फिर के फकाला इन्नी अहबबतू, यहां से आप आए कि बेशक मैंने, अहबबतू का उन्होंने तर्जुमा ये किया कि असरतू, कि मैंने तरजीह दी है। असरतू के मानी होते हैं तरजीह देना, कि मैंने जो है वो तरजीह दी है, क्योंकि तू के माने क्या है, मैंने तरजीह दी है ना। और हुबल खैरी, माल की मोहब्बत कह लें, है ना, खैर की मोहब्बत, तो वो ये कहते हैं कि असरतू के मानी है तरजीह देना, और अन जो है ना ये अला के मानी में इस्तेमाल हुआ है अन, लेकिन इसके मानी यहां पे अला के हैं। और तवारत जो है ना, तवारत छुप गए, वो ये कहते हैं कि क्योंकि शाम का वक्त था जब असली घोड़े और बड़े खूबसूरत और उम्दा घोड़े उनके सामने पेश किए गए, तो जब घोड़े वो पेश किए गए तो घोड़ों का पूरा एक दस्ता था, वो ज्यादा घोड़े थे और बड़े खूबसूरत और बड़े ही अच्छे दौड़ रहे थे, तो आप उनका एक मुआयना कर रहे थे, उनकी घुड़ दौड़ का मुआयना कर रहे थे, जिहाद की गरज से पाले हुए थे, आप घोड़ों का मुआयना कर रहे थे। मुआयना करते करते हुआ क्या, तवारत के छुप गया, क्या छुपा, वो कहते हैं कि तवारत का जो लफ्ज आया है ये सूरज के लिए आया है, इसका मर्जे सूरज है, कि सूरज छुप गया बिल हिजाब ओट में, क्योंकि शाम का वक्त था तो वो ओट में जो है वो छुप गया। अब जो है आपने क्या कहा, रुद्दूहा अलैया, कि इसको लुटाओ मेरी तरफ, इनको वापस लाओ घोड़ों को, क्यों, इसलिए इन्नी अहबबतु हुब्बल खैरी, कि मैं जो था मैंने घोड़ों को तरजीह दे दी, इनकी मोहब्बत को तरजीह दे दी, किस चीज पर तरजीह दे दी, अला जिक्र रब्बी, अन अला के मानी में अल्लाह के जिक्र पर इनको तरजीह दे दी। और जिक्र के दो मानी बयान किए हैं, या तो इससे मुराद कोई फर्ज नमाज थी, जैसे असर की नमाज का वक्त था और थोड़ा सा वक्त होता है और आप इतने मसरूफ हुए उसमें मुआयने में कि असर की नमाज जो थी वो चली गई, और या फिर कहते हैं कि कोई नफली नमाज थी, क्योंकि पैगंबर फराइज से गाफिल नहीं होता, कोई नफली नफल जो पढ़ते थे आप, या कोई वजीफा आप करते थे, आपकी रूटीन थी, क्योंकि अवाब थे, रुजू करने वाले थे, नेमल अब थे, तो वजीफा आपका छूट गया और आपको इस बात का इतना अफसोस हुआ, सख्त सदमा हुआ कि मैं घोड़ों की मोहब्बत में इतना मसरूफ हुआ कि सूरज डूब गया, पर्दा मगरिब में छुप गया, और अल्लाह की याद, नमाज, वजीफा जो था उससे मैं गाफिल हो गया। चुनाचे उन्होंने इसकी तलाफी और अजाले के लिए क्या लोगों से कहा, रुद्दूहा अलैया, इनको दोबारा मेरे सामने पेश किया जाए, वो लाए मेरे पास घोड़े, फतफे का, और फिर लगे मसहन जिबा करने, उन्होंने फिर मसहन के मानी जो है वो क्या किए हैं, कि उन्होंने ये जो मसन है ना, वो कहते हैं कि उन्होंने जिबा करना शुरू किया, विस्सू की کس کو ذبح شروع کیا؟ ٹانگوں کو، والاناک، اور گردنوں کو. تو گویا کہ بسو کی والاناک کا ترجمہ کیا ہے؟ مسلم بسو کی والاناک، کہ انہوں نے جو ہے جو ہاتھ پھیرا ایسے ہی نہیں، ہاتھ کے اندر تلوار تھی. مسلم بس سیف، سیف یہاں پہ چھپی ہوئی ہے. تو انہوں نے ہاتھ سے تلوار جو پکڑی ہوئی تھی، تو ہاتھ سے گھوڑوں کی گردنوں پر اور اس کی پنڈلیوں پر جو ہے نا ضرب لگانے شروع کی، ان کو مارنا شروع کیا. تو گویا کہ انہوں نے جو ہے پھر ان کو جو ہے وہ ذبح کر دیا. اور پھر اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو انہوں نے ایسا کیا، تو اس کی وجہ کیا تھی کہ کیونکہ پریڈ کا معائنہ اور گھوڑے اور اتنے خوبصورت اور تیز دوڑ اور جیت اور صافنات، تو اتنا دلچسپ معاملہ تھا کہ اتنے منہمک ہوئے کہ سورج ہی چھپ گیا. اور پھر ان کو مطلب گویا کہ گھوڑوں کی محبت دنیا کی محبت تھی، جس سے اللہ کی یاد سے غفلت ہوئی. اور پھر انہوں نے گھوڑوں کو پکڑا، اور پھر چونکہ جو چیز اللہ کی محبت میں غفلت کا ذریعہ بنی، اللہ کی یاد کو چھوڑنے کا ذریعہ بنی، یا اللہ کی اللہ کو تھوڑی دیر کے لیے بھول گئے، تو انہوں نے کہا کہ اس چیز کو ہی ختم کر دیا جائے، ہے نا. تو بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں ان کی شریعت میں جیسے گھوڑے بھی حلال تھے، تو گھوڑوں کو ذبح کیا اور ان گھوڑوں کو جو ہے وہ غریبوں مسکینوں میں جو ہے وہ بانٹ دیا. اور اس سلسلے میں مثلا جیسے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہ بات جو ہے وہ پتہ چلتی ہے. کہ کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ مثلا ایک دفعہ ایک صحابی تھے، ابو جہم رضی اللہ عنہ، انہوں نے آپ کو ایک چادر پیش کی، وہ اس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے. آپ نے اس چادر کو لیا، نماز پڑھنی شروع کی. جب نماز پڑھی تو واپس آ کر حضرت عائشہ سے کہا کہ یہ چادر ابو جہم کو واپس کر دو، کیونکہ نماز میں میری نگاہ اس کے نقش و نگار پر چلی گئی اور قریب تھا کہ یہ نقش و نگار مجھے فتنے میں ڈال دیتے. تو آپ نے وہ چادر واپس کر دی. اسی طرح آپ کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، بڑا خوبصورت شاخیں آپس میں الجھی ہوئی، گتھم گتھا باغ، پھلوں سے لدی ہوئی شاخیں، اور ایک پرندہ چڑیا جو ہے وہ آیا، یا چڑیا آئی. اور اب کیا تھا کہ آپ کی نماز پڑھتے پڑھتے باغ میں پڑھ رہے تھے نا، نظر جو اوپر اٹھی تو جو چڑیا تھی نا شاخوں میں الجھ کے رہ گئی، اس کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا. آپ دیکھنے لگے اور نماز کو بھول گئے، اور جب نماز سے فارغ ہوئے آپ کو اتنا افسوس ہوا کہ آپ نے وہ باغ ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. تو یعنی اپنے آپ کو ایسی سزا دینا جو بذات خود جائز ہو، یہ نہیں کہ مال کو بلا وجہ ضائع کر دیا جائے، یہ نہیں. تو کہتے ہیں کہ ایسی سزا جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. اسی طرح حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسی سزا کے طور پر انہوں نے اپنے کپڑے جلا دیے تھے. بہرحال تو اپنے نفس پر ایسی سزائیں مقرر کرنا نیکی کی عادت ڈالنے کے لیے، مثلا کسی کی نماز قضا ہو گئی اب نیند کی وجہ سے، تو اگلے دن سے کیا ہے کہ میں اپنی ایسی مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوستوں کو بھی جانتی ہوں کہ انہوں نے روزے رکھنے شروع کیے کہ فرض میری فجر کی نماز کیوں قضا ہوئی، تو میں اپنے نفس کو صبح اس سے پہلے اٹھاؤں گی تو روزے رکھے. بعض اوقات کچھ لوگ انفاق کرتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے جو ہے گھوڑوں کو جو ہے وہ ذبح کر دیا. تو یہ ایک رائے ہے اور اکثر لوگوں نے اس سے مراد جو ہے وہ یہ لیا ہے. اچھا دوسری بھی ایک تفسیر ہے. دوسری تفسیر کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری تفسیر میں بعض مفسرین نے دوسری تفسیر کو ترجیح دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ فقال انی احببت حب الخیر عن، وہ کہتے ہیں ان کا لفظ یہاں پہ جو ہے وہ وجہ ہے، تعلیل ہے، اللہ کے معنی میں نہیں ہے. کس معنی میں ہے؟ اجل. اجل کیا ہوتا ہے؟ وجہ، ایل اجل. تو اجل کے معنی یعنی مقصد، تعلیل علت وجہ کے معنی میں ہے کہ میں نے یہ جو گھوڑوں سے محبت کی ہے، کیوں محبت کی ہے؟ میں گھوڑوں سے محبت کرتا ہوں ان ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے. اور رب کی یاد کیا ہے؟ تاکہ ان گھوڑوں کے ذریعے میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں. کیوں؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو گھڑ سواری اور گھوڑوں کی دوڑ، اس کی جو مشق ہو رہی تھی، आप पीछे भी पढ़ चुकी हैं सूरत नमल में भी कि उनके पास तो बहुत से दस्ते थे जो मुंजबत रखे जाते थे, जिन्नों के भी, परिंदों के भी, जानवरों की वो बोलियां जानते थे। तो अब बहुत ज्यादा लश्कर कशी वो करते थे, बहुत ज्यादा सफर करते थे। तो उनके घोड़े जो थे वो शौकिया घोड़े नहीं थे जो उन्होंने पाले हुए थे। घोड़े उन्होंने क्यों रखे हुए थे? जिहाद के लिए, ताकि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के दीन को नाफिज किया जाए। और फिर वो ऐसे लीडर और रहनुमा नहीं थे कि उनके नौकर चाकर उनके घोड़ों की देखभाल करे। उनके मतहत तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन इसके बावजूद वो इतने बेहतरीन रहनुमा थे, वो इतने बेहतरीन लीडर थे कि वो क्या करते थे कि खुद डायरेक्ट अपने घोड़ों का मुआयना किया करते थे। तो अमीर जो होता है, या बादशाह, या निगरान, या टीचर, या वालदेन, या जो भी जिम्मेदार हैं, जो राई होता है, वो अपने जो फराइज होते हैं ना, जो उसके मातहत शोबे होते हैं, वो उसकी खुद निगरानी करता है। ये नहीं अपने मातहतों पर छोड़ दें। मसलन वालदेन जो समझदार होते हैं, रात को खुद दरवाजा चेक करते हैं, पता नहीं बच्चों ने बंद किया कि नहीं, पता नहीं बच्चों ने चूल्हा बंद किया कि नहीं, दरवाजा बंद किया कि नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे, वो मातहतों की कसरत थी, जिन भी उनके अंडर थे, लेकिन नफ्से नफीस उन्होंने घोड़ों का मुआयना किया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह भी नफ्से नफीस अपने काम करते थे, हजरत अली रजी अल्लाह भी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह भी, उस्मान गनी रजी अल्लाह भी। तो सहाबा भी ये किरदार जो थे वो अदा करते थे, और उन्होंने भी क्या किया कि अपने घोड़ों का नफ्से नफीस खुद जो है वो मुआयना किया। और जब वो मुआयना, अब देखे कोई चीज जो है, मसलन आपका बेटा है और वो कुरान की तिलावत करता है, इतनी खूबसूरत तिलावत करता है, इतनी अच्छी उसकी बाज औकात, इतनी अच्छी वो तिलावत करता है कि आप साथ पढ़ भी रहे हैं और लग रहा है पूरे माहौल में एक समा बन गया है। जो ही वो फारिग होता है, बेटा है या बेटी, तो आप उसको अपने सीने से लगाते हैं, आप हाथ फेरते हैं प्यार से उसके, कभी मुंह पर, कभी सर पर, कभी कंधे पर, कि माशाल्लाह आज तो मेरे बेटे तूने दिल खुश कर दिया। बस ऐसी तिलावत ही मुझे अच्छी लगती है। तो आप प्यार से गोया के बच्चे से क्यों प्यार करते हैं, आपने बच्चे को कुरान क्यों सिखाया? अल्लाह को कुरान पसंद है, प्यारे रसूल को पसंद था। तो बच्चे का प्यार दरअसल अल्लाह का प्यार है, जो आपने बच्चे से किया अल्लाह से आप प्यार करती हैं ना। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई भी क्लास है, बाज़ स्टूडेंट इतना अच्छा लिखते हैं कि उस्ताद जितना देता है ना बर्तन में से, पूरा का पूरा उसको लौटा देते हैं, इधर उधर नहीं जाता, पूरा का पूरा, और ज्यादा अच्छे तरीके से उसको बयान कर देते हैं। तो आप जयदन जिद जिद्दन ऊपर लिखते हैं, आप कहते हैं एक्सीलेंट, बहुत अच्छा पेपर किया है। बच्चा क्लास स्कूल से वापस आया, उसने बैग रखा, उसने कहा मैंने 100 में से 100 लिया, आप बड़े खुश होते हैं, आप क्या कहते हैं? आप उसको चूम लेते हैं, हाथ फेरते हैं, प्यार करते हैं, अपने साथ लगा लेते हैं। तो ये क्या, ये इंसान का फितरी जज्बा है। कहते हैं कि घोड़ों का जब आपने मुआयना किया और घोड़ों को देख कर आप इतने खुश हुए, क्योंकि एक माहौल बन गया, खूबसूरत घोड़े हैं, साफिनात हैं, और अलजियाद हैं, अलजियाद हैं, देखकर इतना उम्दा, इतने असील, इतने तेज रफ्तार, इतने मजबूत जिस्म के जो घोड़े थे, उनके मायने से आप इतने खुश हुए कि वो चले गए। आपने उनको वापस कहा कि दोबारा वापस लाए मेरे पास, कि इनको मेरे पास लाए, रुदूहा लिया, इनको मेरे पास लाइए। क्योंकि वहां इस तस्वीर में वो क्या करते हैं कि घोड़ों, अल खैर से मुराद घोड़े हैं, और अन जो है यहाँ पे अला के मानी में नहीं है, बल्कि तालील के मानी में है इल्लत, और तवारत से मुराद जो है छुप गए घोड़े, घोड़े चले गए साइड पर, सूरज नहीं छुपा, घोड़े साइड पर चले गए। और इसने मानी ये नहीं है कि वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गए, बल्कि वो घोड़ों को देखकर, उनके मायने को देखकर इतना खुश होते हैं कि घोड़े जब नजरों से दूर हो गए, तो जैसे आप कहती ही नहीं है ए मेरे बेटे फिर तिलावत कर, है ना, तो अब वो कहते हैं घोड़ों को मेरे सामने फिर लाया जाए। फतफी का मसहम बिस्सू की वल आनाक, और वो लगे प्यार से घोड़ों की गर्दनों पर और घोड़ों की टांगों पर और घोड़ों के जिस्म पर हाथ फेरने। और आप देखें कभी घोड़े जब बहुत अच्छा भागते हैं, आपने कभी घुड़सवार के मुकाबले देखे हैं ये हॉर्स राइडिंग, जब घोड़ा भाग कर आता है ना, मालिक खड़ा हुआ होता है और उसको थपकी देता है, प्यार करता है, जैसे बच्चों को माँ बाप थपकी देते हैं ना कि आज तुमने बड़ा अच्छा किया, आज तो तुमने मैदान लूट लिया, आज तो तुमने मैदान जीत लिया। तो हमेशा आप देखें ये जो घुड़सवार होते हैं, जो मालिक होते हैं, जब घोड़े भाग कर आते हैं तो कहते हैं कि घोड़ा ना अपने मालिक के इशारे समझता है। जब उनको रवाना करते हैं तो इसकी रिसर्च से जो बात सामने आती है, जब वो वापस आते हैं ना घोड़े, तो ऐसे वो हिनहिनाता है, मिनमिनाता है कि अपने मालिक की तरफ देखता है, घोड़ा उसको फिर प्यार करता है। यानी घोड़ा भी प्यार करता है हाथ से पांव से, और मालिक भी फिर प्यार करता है कि दोनों आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपने घोड़ों को प्यार किया। तो दो मानी है, एक मानी तो क्या है कि मतलब उसका यह है कि घोड़ों के मायने में मैं इतना मसरूफ हो गया कि उसकी वजह से सूरज गया डूब और मैं अपना वजीफा या नफल या फर्ज जो था वो मेरा रह गया, और फिर उनका उनको सदमा हुआ और उन्होंने उसको जो है वो जिबा करना शुरू किया कि ये चीज है जिसने मेरे रब की याद से मुझे गाफिल कर दिया। और दूसरे मानी ये है कि घोड़ों का मायना किया और कहा कि रब की याद की वजह से मैं इन घोड़ों से मोहब्बत करता हूं, मैंने शौकिया नहीं घोड़े पाले, अल्लाह से मुझे मोहब्बत है, अल्लाह के दीन के लिए मैंने घोड़े पाले हैं ताकि इन घोड़ों के जरिए अल्लाह के राह में जिहाद करूं। और घोड़ों को दौड़ाया और जब वो नजरों से घोड़े ओझल हो गए तो उनसे उनको दोबारा फिर बुलवाया ताकि उनसे उनको उनसे प्यार का इजहार करूं, तो मोहब्बत से उन पर हाथ फेरना शुरू किया। तो ये है इसके माने। तो बहरहाल अल्लाह ताला ये बताते हैं यहाँ पे कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी मुझसे बहुत प्यार करने वाले थे, और वो जो कुछ भी करते थे वो मेरे प्यार की वजह से करते थे। वलकद फतन्ना सुलेमाना, और बेशक तहकीक हमने आजमाया सुलेमान अलैहिस्सलाम को, वलकैना अला कुर्सी यही जसदन, और हमने डाल दिया उसकी कुर्सी पर जसद, सुम्मा अनाब, फिर उसने हमारी तरफ जो है वो रुझू किया। यहाँ पे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक और आजमाइश का जिक्र किया जा रहा है। अब इस आजमाइश का इतना ही जिक्र किया गया कि कोई धड़ था जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी पर डाल दिया गया। तो ये वो धड़ क्या था, कुर्सी पर डालने का मतलब क्या है, आपकी ये आजमाइश क्यों कर हुई, इसकी ना तो तफसीलात कुरान में मौजूद है ना किसी सही हदीस से हमें जो है वो पता चलती है कि ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की क्या आजमाइश थी। तो फिर जो है फिर इससे हमारे लिए अमल का उसूल क्या निकलता है, इससे फिर अमल का उसूल ये निकलता है कि हम जो हैं ये करें कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये आजमाइश का जो अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, तो हम क्या करें कि हम जो हैं मकसदियत पर तवज्जो करें, मकसद जो है ना उस पर हम गौर करें। एक बात आप याद रखिएगा, बाज मुफस्सरीन ने एक सही हदीस को इस वाक्य के साथ चश्मा करने की जो है वो चश्मा किया है, एक सही हदीस है और बुखारी की हदीस है। और लेकिन जैसे ये जो बुखारी की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के रेफरेंस में उसको नहीं कहा, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उन्होंने ये जो हदीस जो अभी मैं आपको सुनाऊंगी, इस हदीस को किताबुल जिहाद, किताबुल अंबिया, किताबुल ईमान व नज़्र वगैरह में मुतअद्दिद तरीकों से नकल किया है, लेकिन उन्होंने किताबुल तफसीर में सूरत स्वाद की इस आयत की तफसीर में उसको नहीं लिखा। फिर जो है वो हदीस मैं आपको सुना देती हूँ जिसका निचोड़ के उन्होंने कहा था एक दफा कि आज की रात मैं अपनी तमाम बीवियों से जो है वो हम बिस्तरी करूंगा, और बाज कहते हैं कि उनकी तादाद 70 थी, बाज कहते हैं कि उनकी तादाद जो थी वो 90 थी, तो इसलिए हम बिस्तरी करूंगा ताकि उनसे शाह सवार पैदा हों जो अल्लाह की राह में जिहाद करें। और इस पर उन्होंने इंशाल्लाह नहीं कहा था क्योंकि अपनी तदबीर पर सिर्फ एतमाद किया। नतीजा ये हुआ कि सिवाय एक बीवी के कोई बीवी हामला नहीं हुई, और हामला बीवी ने वो बच्चा जना जो नाकिस यानी आधा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर सुलेमान इंशाल्लाह कह लेते तो सबसे मुजाहिद पैदा होते। तो बहरहाल ये जो हदीस है ये इमाम बुखारी ने भी किताबु तफसीर में ये नहीं लिखी। तो बाज मुफस्सरीन ने इस हदीस को इस आयत के रेफरेंस में जो है वो कोट किया है, लेकिन ज्यादातर मुफस्सरीन ये कहते हैं कि वो इस आयत की तफसीर में नहीं है, बल्कि वो ये है इस तफसीर में है कि अपनी जो अकल है या अपनी तदबीर पर एतमाद नहीं करना चाहिए बल्कि इंशाल्लाह कहना चाहिए, और जो है वो अल्लाह पर जो है वो एतमाद करना चाहिए, जैसे इंशाल्लाह कहना, जो बाग वालों की मिसाल भी आप पढ़ चुके हैं। तो बहरहाल अब फिर ये है कि यहाँ पे हमारे लिए उसूल क्या निकलता है, तो मुफस्सरीन फिर जो बात हमारे सामने आती है वो ये कहते हैं कि ये जो मिसाल अल्लाह ताला ने दी है तो इसका मतलब ये है कि इसका ताल्लुक, जैसे इस आयत का ताल्लुक जो है वो कुरान मजीद के मुश्किल तरीन मकामात में से है। बास कुरान की आयतें ऐसी हैं कि उसकी तफसीर बयान करने के लिए कोई यकीनी बुनियाद ही नहीं मिलती, तो ये कुरान की मुश्किल तरीन आयतों में से है, मुश्किल तरीन मकाम है। तो बहरहाल फिर ये आजमाइश क्या थी कि अल्लाह ताला ने उनकी कुर्सी पर जसद डाल दिया कि बजाहिर देखने में वो जसद था, जिस्म था, पर रूह नहीं थी अंदर। तो बाज मुफस्सरीन जो हैं वो ये कहते हैं कि जैसे उनकी अपनी नस्ल में से कोई उनका बेटा ऐसा नहीं था जो उनका वली करार पाता, तो शायद उनकी ये ख्वाहिश थी, तो लेकिन वो चूंकि जसद था तो फिर उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश से रुजू कर लिया। सुम्मा अनाब, जैसे ख्वाहिश थी किया नहीं, क्योंकि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तो वारिस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बन गए, अल्लाह ने उनको नवाजा भी था, लेकिन इनकी औलाद में से कोई ऐसा नहीं था जो इनका वारिस बनता। तो चूंकि कुर्सी से मुराद जैसे कोई जानशीनी या हुकूमत या फरमा रवाई की बात जो है वो पता चलती है, तो हो सकता है कि ये चीज जो थी कि इनकी ये ख्वाहिश, गालिबन मुफस्सरीन ये कहते हैं कि इनकी ये ख्वाहिश कि मेरा बेटा मेरा जानशीन बने, ख्वाहिश जैसे होती है, तो ये इनके हक में अल्लाह ताला ने फितना करार दिया। और इसी तरह एक राय जो है वो ये भी सामने आती है कि असल बात ये है कि और खैर अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि ये जो था ये कि इनकी हुकूमत बड़ी वसीउल अतराफ थी, बड़े ताकतवर ये बादशाह थे, और अल्लाह ताला कहते हैं कि लेकिन हमने इनके तख्त को जो है जसदे बेजान बनाकर जैसे एक जस उस पर डाला, तो कनाए के तौर पर ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेबसी की तस्वीर है कि आखिर एक वक्त ऐसा आया कि इनकी हुकूमत सिमट सिमटाकर मरकज तक महदूद रह गई, गोया कि जिस्म रह गया, रूह गायब हो गई, जैसे एक बहुत ही बेबस और गमजदा बादशाह नहीं होता कि अपने मरकज में सिर्फ महसूर होकर रह जाए, तो ये हो सकती है। तो खैर गायब का इलम कौन, अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल कोई हुकूमत से मुतल्लिक की बात है जिसमें आपकी आजमाइश की गई, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, जो भी आपकी गलती माना, फिर आपने रुजू किया, पाला रब इग़फ़िरली, फिर आपने दुआ की कि मेरे रब बख्श दे मुझे, मेरे रब मुझे माफ कर दे। तो पहली बात क्या पता चलती है, आजमाइशें आती हैं दर्जों को बुलंद करने के लिए। दूसरी बात यह कि जब आजमाइशें आए तो अपनी गलती का एहसास हो तो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, अकेले में तन्हाई में खलवत में बैठकर अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, रोना चाहिए, इस्तग़फार करना चाहिए। और तीसरी बात क्या पता चलती है कि उन्होंने भी कहा रब्बि ग़फ़िर ली, क्या मेरे रब मुझे बख्श दे, और फिर क्या कहा वहब ली मुल्कन, और मुझे दे बादशाहत, और मुझे दे मुल्क, ला यम बगी नहीं मुनासिब ले आहदिन किसी एक को, मिम्बादी मेरे बाद, ऐसी बादशाहत दे जो मेरे बाद किसी के लिए भी ना हो, इन्नक अंतल वहाब, बेशक तू ही है देने वाला। और वहाब जो है यहाँ मुबालगे का सिगा है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जो है वो हदीस भी पता चलती है, और वो हदीस क्या थी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो है अल्लाह ताला से दुआ की। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह नो रवायत करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस तामीर कर लिया तो अल्लाह से तीन दुआएं की, इनकी दो दुआएं कबूल हो गई और तीसरी कबूल नहीं हुई। पहली दुआ क्या थी आपकी, आपने अल्लाह से दुआ की थी कि आपके फैसले हक पर मबनी और अल्लाह के फैसलों के मुताबिक हों, आप ऐसे फैसले करें जो अल्लाह ही के फैसले हों, और अल्लाह ने ये चीज आपको दे दी, आप बड़े बेहतरीन फैसले करते थे ना। हालांकि अल्लाह ताला कहते हैं कि फसल खिताब तो मैंने दाऊद को भी दिया, लेकिन ये जो थे ये चीफ जस्टिस थे, बहुत अच्छे फैसले करने वाले। दूसरी आपने दुआ की कि आपको ऐसी हुकूमत मिले जो किसी और के लायक ना हो, जैसी ये जो है ना ये मिम बादी, ये आयत नंबर 35 में इसको नोट कर ले, इसके दो मानी हैं, मिम बादी मेरे बाद का एक मतलब तो यह है कि मेरे सिवा मेरे जमाने में मेरी जैसी अजीमुशान सल्तनत किसी और को मुयस्सर ना हो, दूसरे इसके मानी ये हैं कि मेरे बाद किसी को ऐसी अजीमुशान हुकूमत हासिल ना हो, मेरे दुनिया से जाने के बाद, समझ आई, मेरी हुकूमत के बाद, समझ आई, एक तो मेरे जमाने में कोई मेरे शायान का और बादशाह नहीं होना चाहिए, दूसरे मानी क्या है, मेरे बाद किसी और को ऐसी अजीमशान हुकूमत ना मिले। तो ये इनकी दूसरी दुआ थी, ये चीज भी अल्लाह ने इनको दे दी। फिर आपने ये दुआ की कि जो शख्स घर से सिर्फ इस मस्जिद में नमाज के इरादे से रवाना हो, वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाए जिस तरह अपनी माँ से पैदा होते वक्त गुनाहों से पाक था। तो दो दुआओं के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दो दुआएं कबूल हो गई, तीसरी दुआ जो है कबूल नहीं हुई। और आपने फरमाया उम्मीद है कि वो तीसरी नेमत उम्मत मुहम्मदिया को मिलेगी, और उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि अल्लाह ने ये दुआ हमारे हक में कबूल कर ली है। और ये हदीस जो है ये मुसनद अहमद की और निसाई की हदीस है। तो बहरहाल, और आप देख लें कि हरम की नमाज का कितना सवाब है और मस्जिद नबवी का, इन्ना का अंतल वहाब, और बेशक आप बहुत ज्यादा जो है वो देने वाले हैं। और अब ये जो दोनों वाकयात हैं, इनसे हमारे लिए अमल के क्या सूल निकलते हैं? पहली बात ये कि जब अल्लाह की याद से गफलत हो तो अपने आप को कुछ सजा देनी चाहिए, है ना, कि अपने ऊपर खुद ही जो है कोई ऐसी चीज नाफिज करना कि मसलन दावत रात को की या दावत पर गए तो फिर उसकी वजह से मैंने फजर की नमाज सुबह कजा कर दी, रात देर तक जागते रहे। तो इसका ये नहीं मतलब कि मैं ये नहीं कह रही कि आप दावत ना करें या दावत पर ना जाएं, लेकिन आप फिर जरूर सोचेंगे कि अब जल्दी करनी है ना, कुछ तय करेंगे। दूसरी बात यह है कि अमीर या जिम्मेदार को अपने कामों की निगरानी खुद करनी चाहिए, जैसे आपने नफ्से नफीस घोड़ों का मुआयना किया। तीसरी बात यह है कि एक इबादत जब की जाए तो दूसरी में मशगूल होना गलती है। मसलन अगर जो है गोया के जिहाद के घोड़ों का मुआयना इबादत है, लेकिन ये कि अगर कोई फर्ज और मुतासिर हो रहा है तो क्या करना है कि उसको लिमिटेड करके ताकि दूसरा फर्ज मुतासिर ना हो, तरजीहात का तायुन करना है। समझ आ गई? नफल है, वजीफा है, उसमें मसरूफ है, और फराइज दूसरे मुतासिर हो रहे हैं तो तय करना है कि कैसे करना है। और चौथी बात इसे अमल के लिए मिलती है कि जब गलती का एहसास हो, पता चले कि मुझसे गलती हो गई है, तो उसको अपनी अना का मसला ना बनाएं, अल्लाह की तरफ रुजू करें और अल्लाह से इस्तग़फार करें, और अल्लाह ताला जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो अता करने वाला है। फसखरना लहु रीहा, हमने बस मुसखर कर दिया उसके लिए हवाओं को, तजरी बे अम्र ही, चलती थी इसके हुक्म के मुताबिक। अब आप देख लें कि हवाएं जो थी अल्लाह ने उनके लिए ऐसे मुसखर कर दी थी कि आप जैसे चाहते थे तो हवाएं जो थी उस रुख पर जो थी वो चलना शुरू हो जाती थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हवाओं को उनके का ताबे कर दिया था, हवाएं उनके लिए मुसखर थी। और रुखा अन जो है रा खा वो से है, और इसके मानी है आहिस्ता आहिस्ता, नरम नरम, मलायम मलायम। वैसे तो आंधी और तूफान में बन जाती है ना, लेकिन जैसे आ हई सू असाब, और आपको पता है ना असाबत सहम, तीर का निशाने पर लगना, इसी से मुसीबत है। तो असाब क्या होता है कि किसी चीज का निशाने पर पहुंचना, साइबुर राय, किसी का अच्छी राय का होना, बिल्कुल ठीक राय होना। तो हई सुई असाब, जैसे आप चाहते थे उस तरफ को हवाएं चलना शुरू हो जाती थी। तिजारत के लिए आप अपने लश्करों को चलाना चाहते थे, वह शयातीना, और शैतान, अब यहाँ पे जिन्नों का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने शैतानों को मुसख़र कर दिया। तो शैतान जो है वाहिद है, और शयातीन जो है वो जमा है, और शयातीन कुल्ला सब, कुल्ला यहाँ पे सब के लिए है, बन्ना इन बानून या से है बनाना, बनाने को भी कहते हैं, इमारत के लिए भी आता है। और क्या मतलब है? इंजीनियर, इंजीनियर के जो जिन थे वो इंजीनियर थे, ये बनाने वाले जिन जो थे वो मुसख्खर कर दिए थे। वह गवास, गैन वो स्वाद है गोता लगाना, के ऐसे जिन जो समंदर के अंदर गोते लगाते, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हीरे जोहरात जो थे वो जमा करके लाते। तो गोया के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने जिनों को मुसख्खर कर दिया था कि एक तरफ, और वो जिन भी कैसे जो शयातीन थे, काबू में आने वाले नहीं थे लेकिन इनके लिए मुसख्खर थे। वह आखरीना, और दूसरे जो जिन थे, कुछ तो ये थे ना इंजीनियर थे, इमारतें बनाते थे, डिजाइनिंग इमारतें, मिट्टी का ढोना, खूबसूरत इमारतें। वह गव्वास, और फिर वो गोता लगाकर हीरे जवाहरात निकाल कर लाना। आखरीना, और दूसरे, मुकर्रनीना, कर्न से है, एक रस्सी से दो ऊंटों को बांधना, साथी दोस्त के लिए भी आता है, मुकर्रनीना, और बंधे हुए थे, मुकर्रन की जमा है मुकर्रनीन, वो बांधे हुए थे, फिल अस्वाद, स्वाद फादाल से है, जंजीरों को कहते हैं, जंजीरों के लिए सलासिल लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर अस्फाद का है, और अस्फाद जो है जमा है वाहिद है सफादा भी और सफाद भी, लोहे का तौक या जंजीर के लिए इस्तेमाल होता है। तो उनको जंजीरों में जो है वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जकड़ कर रखा हुआ था, बांध कर रखा हुआ था। और आपका ये कहना कि मेरी जैसी बादशाहत है और किसी को ना हो, मैं आपको हदीस भी सुनाती हूँ कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, रावी हैं इसके अबू हुरैरा रजी अल्लाह नो, आपने फरमाया गुज़िश्ता रात एक दो हेकल जिनसे मुझ एक दो हेकल जिन मुझसे भीड़ पड़ा, यानी मुझसे उसकी लड़ाई हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये या कोई ऐसा ही कलमा कहा, फिर अल्लाह ताला ने मुझे इस पर गालिब कर दिया, मैंने चाहा कि मस्जिद के सतूनों में से किसी सतून के साथ उसे बांध दूं, झगड़ा हुआ, मैं जिन पर गालिब आ गया और मैंने चाहा कि मस्जिद के सतूनों में से किसी सतून के साथ उसे बांध दूं ताकि सुबह तुम उसे देख सको, फिर मुझको अपने भाई सुलेमान की दुआ याद आ गई। क्या दुआ थी? क्या मेरे परवरदिगार मुझे ऐसी हुकूमत अता कर जो मेरे बाद किसी और के शयान ना हो, किसी और के मुनासिब ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको जिल्लत के साथ भगा दिया, बुखारी की रवायत है। तो मतलब यानी गोया के आपके लिए जिन जैसे मुसख़र थे और आपने दुआ भी की थी और अल्लाह ने कबूल कर ली, तो कहते हैं कि मुझे अपने भाई की वो दुआ याद आ गई और मैंने जिनको जो है वो भगा दिया। तो ये फजीलत जो है किसको हासिल हुई? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को। तो बहरहाल के जिन उनके लिए जकड़े हुए थे, हाजा ताउना, ये है हमारी बख्शिश, ये हमारी अता है कि हवाएं मुसख़र हैं आपके लिए, जिन आपके लिए मुसख़र हैं, फमनुन बस एहसान कर, औ अमसिक बगैर हिसाब, या रोक रख बगैर हिसाब के, मन्ना या मुन्नु एहसान के मानी होते हैं, और अमसिक जो है मसक, आप पहले ही पढ़ चुकी हैं, इसके अंदर दो बातें पाई जाती हैं, नंबर एक किसी चीज से चिमट जाना, नंबर दो उसकी हिफाजत करना। मसलन आपके पास जैसे चाबियां हैं, आप चाबियां आपके पास मौजूद हैं, आप उसको संभाल के रखती हैं, चिमटी रहती हैं आप उसके साथ और आप उसकी हिफाजत करती हैं, उस चीज को कहते हैं जो पहले से आपके पास मौजूद हो। जैसे बीवी है, या तो बीवी को रोक ले या उसको तलाक दे दे, इसके लिए भी आपने पढ़ा है ना। तो मसा का पहले से कोई चीज मौजूद हो और उसे हाथ से निकल लेना देना, उससे चिमट जाना और उसकी हिफाजत करना। तो अब क्या है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है कि ये सारी हमारी बख्शिश है, हमारी अता है, अब आपका काम है या तो आप एहसान करें या फिर आप इसको रोक लें, बगैर हिसाब, बगैर हिसाब के हैं, इसके क्या मानी है? इन ये अजीम और शान नेमते जो हैं ये तुम्हारी उम्मीदों और तवक्कुआत से कहीं बढ़ चढ़ कर हैं, तुम इसका ख्याल भी नहीं कर सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और मुफस्सरीन जो हैं वो क्या बताते हैं, ये वही बात है जैसे सूरत कहफ आयत 86 में आप पढ़ चुकी कि अल्लाह ताला ने हजरत ज़ुल्करनैन से कहा था, कुल ना या ज़ुल्करनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िबा व इम्मा अन तत्तख़िज़हुम फ़ीहिम हुस्ना, कि ऐ ज़ुल्करनैन हमने इनको तुम्हारे इख्तियार में दे दिया, अब चाहो तो इनको सजा दो और चाहो तो इनके साथ हुस्ने सलूक करो। और इसका मतलब क्या है कि ऐ सुलेमान हमने आपको बहुत अता कर रखा है, बहुत नवाजा है, बड़ी नेमतें दी हैं आपको, मुकम्मल इख्तियारात हैं जिन्हों के मामले में, हवाओं के मामले में, आप इनसे जैसे चाहे काम लें, जैसे चाहे ना लें, चाहे किसी को मुआवजा दें चाहे ना दें, चाहे मुआवजा थोड़ा दें या ज्यादा दें, आपकी सवाबदीद पर है। और बाज ये कहते हैं कि ये मतलब था कि दौलत बहुत ज्यादा चूंकि अल्लाह ताला ने दी थी तो कह दिया जैसे चाहो खर्च करो। तो ये दरअसल असल बात क्या है कि ये अल्लाह ताला के इनामात का जिक्र है जो अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर किए, और अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तुझे बड़ा दिया है बगैर हिसाब के, खुद दिया है, यानी तेरा इसमें कोई हक नहीं है, मैंने तेरी चाहत के बगैर ही दे दिया। वा इन्ना लहू इंदना लज़ुल्फ़ा, और बेशक इसके लिए था हमारे पास कुर्बत का मकाम, मरतबा, व हुस्ना माब, मस्दर मीमी है माब, और जो है वो वापस लौटने की जगह मर्जे को भी कहते हैं, और फिर वो जो मर्जा कैसा है उसके लिए भी आता है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि सल्तनत और फरमा बरदारी में उसने हमारी इबादत की, नेमल अब्द था, शाही में जो है वो फकीराना जिंदगी बसर की, और ये बड़ी आजमाइश की बात है, और वो इसमें पूरा उतरे तो हमने उन्हें मुकर्रबीन में शामिल किया और बुलंद दर्जात जो थे वो अता कर दिए। وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مآب। आप अच्छा लिबास पहन लें तो क्या होता है, गर्दन अकड़ने सी लगती है, क्या होता है, एक अजीब सी तबीयत हो जाती है बाज़ औक़ात। अच्छा घर हो, पहले छोटे घर में होते हैं, बड़े घर में चले गए, अपने घर में चले गए तो तबीयत अजीब हो जाती है बाज़ लोगों की, है ना। अच्छी सवारी मिल जाए, गाड़ी चेंज कर ली, तो क्या कहते हैं, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, या फिर ये जब दौलत आती है तो बड़े अकलमंद बन जाते हैं कि जो जिसके पास दाने होते हैं ना उसके नकम्मे भी सियाने हो जाते हैं। तो गुरूर और तकबर नहीं किया करना होता नेमतों मिलने पर, बल्कि आजी इंकसारी, अल्लाह की तरफ रुजू और अल्लाह के करीब होना।